नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटकों और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका। दिल्ली पुलिस ने शहादरा क्षेत्र से 1500 से अधिक अवैध शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। और आज विज्ञान दिवस है, इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लोगों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के धौज में कश्मीरी डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। डॉक्टर मुज्जबल फरीदाबाद के अलफला विश्वविद्यालय में कार्यरत है। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय कश्मीरी डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है।
रेड्स के दौरान यहाँ पे 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, इनसे जो है रिकवरी की गई है।
राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास आज शाम एक कार में धमाका हुआ। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना शाम 6:55 पर प्राप्त हुई। दमकल विभाग के अनुसार ये सूचना प्राप्त होते ही मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गई हैं और आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है। इस घटना में इस कार के आसपास खड़ी 2 कारों में भी आग लगने की खबर है। दिल्ली पुलिस ने शहर के शहादरा क्षेत्र से 1500 से अधिक अवैध शराब के क्वार्टर ले जा रहे 27 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शहादरा रेलवे लाइन के पास एक कार में अवैध शराब मौजूद है। इस सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन के दौरान उन्हें ये सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बताया कि वो जब्त शराब के स्रोत और आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने देश भर में फैले हुए एक साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह 5 करोड़ रुपए क्रिप्टो लेनदेन में दुबई आधारित हैंडलर से जुड़ा था। जांच पड़ताल के बाद इस गिरोह से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तथा लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बरामद की गई, जिससे ये धोखाधड़ी का अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े कई बैंकों में फर्जी कंपनियां और म्यूल चालू खातों का भी पता चला है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज डीएवी पब्लिक स्कूल आर के पुरम द्वारा आयोजित ज्ञानोदय इल्यूमिनेटिंग माइंड्स कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय से जुड़े सभी सदस्यों को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। श्री सूद मार ग्रेगोरियस ऑर्थोडॉक्स चर्च के स्वर्ण जयंती समापन समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में समुदाय के प्रति आस्था, करुणा और सेवा के 5 दशकों का जश्न मनाया गया। श्री सूद ने बताया कि कार्यक्रम ने आध्यात्मिक और सामाजिक सद्भाव के प्रति चर्च के निरंतर योगदान को प्रतिबिंबित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। नई दिल्ली में आज शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है।
हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की, जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है।
इस अवसर पर श्री शाह ने अमूल और इफको को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष दो स्थान हासिल करने पर बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कार्यों, सरकारी नीतियों और जन मुद्दों पर सार्थक और व्यवस्थित चर्चा पर केंद्रित होगा। कोहिमा में आज दोपहर 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में श्री बिरला ने संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
हमारी कोशिश होगी, हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले, सदन चर्चा के लिए, संवाद के लिए, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए रखने के लिए, नीति पॉलिसी मुद्दे कानून बनाना, इन सारे विषयों पर है। हम कोशिश करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं और सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा रहती है जो कुछ भी चर्चा करे सदन में करे। नियोजित तरीके से सदनों को गतिरोध करना ये लोकतंत्र के लिए श्रेष्ठ परंपराएं नहीं है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसमें सभी प्रमुख खेलों की सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी। स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये योजना केवल एक प्रस्ताव है, इसलिए इस परियोजना की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए कतर और ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स सिटी का मूल्यांकन किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन था। नामांकनों की जांच बुधवार को की जाएगी और प्रत्याशी अपना नाम 15 नवंबर तक वापस ले सकते हैं। निगम के जिन वार्ड पर उपचुनाव होने हैं इनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, ढिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर वार्ड शामिल हैं। मतदान इस महीने की 30 तारीख को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कैट ने आज दिल्ली में राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी की 105वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित चांदनी चौक से सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्र ऋषि ठेंगड़ी भारतीय आर्थिक चिंतन के प्रखर विचारक और स्वदेशी दर्शन के प्रणेता थे। उनकी प्रशंसा करते हुए श्री खंडेलवाल ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रीयता, श्रम, स्वावलंबन और आत्म गौरव के अद्भुत संगम का प्रतीक रहा। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ का संकल्प भी लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला अनुसंधान से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में वास्तविक समाधान प्रदान करने लगी है। नई दिल्ली में दूसरे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद ब्रिक्स स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि भारत ने अब खुद को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर लिया है। ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रयासों से संभव हुआ है। डॉ सिंह ने कहा कि देश जैव प्रौद्योगिकी गलियारे के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ये वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के एक नए युग का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक BIRAC एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस कार्यक्रम की शुरुआत की। ये युवा नवप्रवर्तकों को अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी विचारों को सफल उद्यमों में बदलने के लिए सशक्त बनाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनिवार्य इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की उड़ान कैलिब्रेशन कल सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की जाएगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक यात्री परामर्श में बताया कि इस अवधि के दौरान उड़ानों को विनियमित किया जाएगा, जिससे कुछ उड़ानों के समय पर प्रभाव पड़ सकता है। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर नवीनतम उड़ान जानकारी और स्थिति प्राप्त कर लें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज विश्व विज्ञान दिवस है। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुसंधान पर बल दे रही है। अनुसंधान की शक्ति से ही राष्ट्र के स्थायी और समावेशी भविष्य को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार नवाचार और प्रौद्योगिकी से संचालित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में लगी हुई है। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में आज उर्दू दिवस के अवसर पर मुशायरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि उर्दू भाषा सिर्फ एक जबान नहीं बल्कि गंगा जमनी तहजीब की पहचान है। उन्होंने कहा कि ये भाषा दिलों को जोड़ने का काम करती है और दिल्ली नगर निगम सदैव सभी भाषाओं और संस्कृतियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निगम साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उर्दू दिवस इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान देश के कई प्रसिद्ध शायरों और कवियों ने दर्शकों के सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वहीं कार्यक्रम में आए लोगों ने दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसे आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रयास न केवल भाषा के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि दिलों को जोड़ने वाली संस्कृति को भी जीवंत बनाए रखता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर रेल और हवाई दुर्घटनाओं से संबंधित एक वीडियो में किए गए दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए हैं। इकाई ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और फर्जी खबरों को रोकने के अभियान का हिस्सा बने। पीआईबी ने कहा कि ऐसी सामग्री आम जनता में भय और सनसनी फैलाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाई जाती है। लोगों से ऐसी सामग्री साझा न करने का आग्रह किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा निर्मित फर्जी वीडियो शेयर कर रहे हैं। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि इन वीडियो को डिजिटल रूप से संशोधित कर एक झूठी कहानी गढ़ने और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए बनाया गया है। सरकार ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध दावे की हमेशा पुष्टि करने और ऐसी सामग्री की तुरंत 9187997112159 पर रिपोर्ट करने या factcheck@pib.gov.in पर ईमेल करने का आग्रह किया है। नागरिकों को ऐसे किसी भी वीडियो को शेयर न करने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वायु प्रदूषण से लड़ाई में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस के शर्मा और एम्स के ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ सौरभ मित्तल इस दौरान श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने आम जनता और यात्रियों को सूचित करते हुए कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नई रोहतक रोड कमल टी पॉइंट से पंजाबी बाग मार्ग पर जल निकासी रखरखाव और उन्नयन कार्य चलने के कारण लेन 2 अगले 45 दिनों तक प्रभावित रहेगी। राजधानी में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटकों और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका। दिल्ली पुलिस ने शहादरा क्षेत्र से 1500 से अधिक अवैध शराब के क्वार्टर ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और आज विज्ञान दिवस है, इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।